ஓம் சாந்தி. பாபா கா மதுபன் ஏக் ஐசா ஸ்தான் ஹை ஜோ பேஹத் கா, சச்முச் மே பேஹத் கா அனுபவ் கராதா ஹை. ஹே ஹம் சப் பாபா கே பச்சே, ஃபிர் பி யஹா ஆதே ஹை तो किसी भी टर्न में आ जाएं तो बेहद का अनुभव होगा. वैसे हम अपने लौकिक घर में भी बाबा के बच्चे हैं, लौकिक सेंटर जो सेंटर हमारा है लोकल, उसमें भी बाबा के बच्चे हैं. फिर हम भी कहेंगे हम चंडीगढ़ से आए हैं, हम चेन्नई से आए हैं, हमारा सेंटर हैदराबाद में है, हमारी बहन जी का ये नाम है, कहेंगे ये लंदन का ग्रुप है. फिर भी वैसा हो जाएगा. और कितना भी कॉन्शियसनेस में रहो कि हम बेहद के हैं, बेहद का बाप है, बहुत समय से 84 जन्मों से हमको मैं का अनुभव होता ही रहा है. तो मैं के साथ मेरा जरूर होता है. या तो मैं खत्म हो जाए तो सन्यासी लोग इसीलिए लक्ष्य क्या रखते हैं, लीन हो जाओ, हाँ, ब्रह्म में लीन हो जाओ तो ना रहेगा मैं, ना रहेगा मेरा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. बांसुरी में तो अलग अलग सुर होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये मैं तो परम धाम में भी रहता है और मैं हर युग में रहता है. तो केवल उस मैं को युग के अनुसार आप देखेंगे, युग का प्रभाव मैं पर और मैं का प्रभाव युग पर पड़ता है. इस युग में जिसको हम तो इससे निकल आए, आप सब किस युग के हैं, संगम युग के हैं या कल युग के हैं? जो संगम युग के हैं वो हाथ उठाओ. देखो सब संगम युग के हैं, लेकिन हम थोड़े से हैं. जब हम लौकिक में जाते हैं दुनिया में तो मेजॉरिटी किसकी है? दूसरे वालों की है. राज किसका है? अभी हम ले रहे हैं उसको, उनके ही हेड का है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है. तो इसलिए आज के समय में आप प्रायः देखेंगे कि लोग कलयुग का नाम लेकर कहते हैं, करते मनमानी है, अपना संस्कार के अनुसार करते हैं, लेकिन कहते हैं कलयुग है ना, कलयुग में तो ये होता ही है. तो क्या है, इकट्ठे रहते हुए भी अकेले हैं, किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी चीज में सुबह से शाम तक उनको कुछ ना कुछ झगड़ा करना ही है. अच्छा, तो ये झगड़े से सारा कुछ जो प्राप्त होता है वो खत्म हो जाता है. कल ही मैं एक आत्मा से मिला, बहुत अच्छी आत्मा, संसारिक हिसाब से धन भी बहुत, अपना घर. अब उसको कोई बीमारी हो गई है तो बीमारी की स्थिति में उसने एक सर्वेंट रखा हुआ है जो उसका सारा टाइम ध्यान रखता है. तो बोलता है कि मुझे डिप्रेशन आ गया है. मैंने कहा भाई क्यों आ गया, अच्छे भले पॉलिटिशियन है तो अच्छा घर है, सब कुछ है। मैंने कहा अच्छा मैं आपसे बात करता हूं। तो सार ये निकला कि वो जो सर्वेंट उनको 24 घंटे ध्यान रखता है, दवाई देता है, उठाता बिठाता है, उससे उसकी पत्नी को ईर्ष्या हो गई है। वो उसको अपने साथ खिलाता था तो पत्नी कहती है कि ये सर्वेंट होकर आपके साथ क्यों खाता है, इसको को अपना खाना बनाया करे और खाया करे। तो बेचारा मुझे कह रहा था देखो पत्नी को मैंने जो जितना पैसा दिया, जो मांगा दिया, सब कुछ दिया, अब वो ये नहीं सहन कर सकती कि एक सर्वेंट मेरी सेवा करके मुझे कुछ शांति में रखता। मामूली सी बात है लेकिन ये घर घर में, घर घर का महाभारत चलता ही रहता है। इसमें कोई कोशिश भी करे कि मैं अच्छी तरह किसी से व्यवहार करूं, उसका अच्छा व्यवहार भी उसमें मिसफिट हो जाता है, फिट नहीं बैठता। मान लीजिए आप किसी पर दया करें, रात को आपके घर आ जाए, भाई मेरे को कोई जगह नहीं सोने की, मुझे एक रात रख लो। पहले तो कोई रखता ही नहीं, आजकल पहले ही सोचने लग जाते हैं कोई चोर होगा, उचक्का होगा, मेरे को क्या जरूरत है, उसको टालेंगे। अगर रख भी लें दया करके, वो तो सो जाएगा, मालिक मकान जागता रहेगा सारी रात कि भाग ना जाए कुछ लेकर। ये दया का फल है। इसी प्रकार से आप रेलवे लाइन में खड़े हैं टिकट लेने, कोई आके बोलेगा मेरी माँ बीमार है, आप मेरा टिकट ले दो, लाइन में लाइन लंबी है, आप उसको ले देते हैं, बाद में आपके सामने ही हंस रहा होगा, देखा इसको बेवकूफ बनाया। दया करने वालों के साथ आजकल ऐसा आम होता है। एक सास थी तो सास ने सोचा, लोग हमेशा कहते हैं कि सास बहू को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करती, मैं जब अपने बेटे की शादी करूंगी तो मैं अपनी बहू को बेटी से भी अच्छा रखूंगी, ताकि दुनिया में मिसाल हो जाए कि सब सास ऐसे नहीं होते। ऐसा ही हुआ। जब उसकी बहू घर में आई तो उसने कहा बेटा तुमको कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं करूंगी, तुम रानी बन के यहां रहो। तो बहू ने कहा ठीक है। अब बहू को खाट पर वो चाय दे, हर काम बहू की जगह वो करे। तो 8-10-15 दिन बीत गए, अब बहू मैगजीन पढ़ती रहे, सास काम करती रहे। आखिर सास ने सोचा कि ये तो शायद मैंने गलती कर ली है, मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करेगी, मेरा प्यार से मेरा हाथ बटाएगी, सब ये तो बैठ गई है, वो कुछ करे ही ना। आखिर अपने बेटे को कहा कि बेटा ये तो कुछ उल्टा ही हो गया, मैंने तो इसका भला सोचा था कि मैं उसको अच्छा ट्रीट करूं, क्योंकि कलयुग है। तो मां और बेटे ने सलाह की कि किस तरह इसको अब खाट से उठाया जाए। तो अगले दिन जब वो नॉर्मल मैगजीन पढ़ रही थी बिस्तरे पर, तो सास ने झाड़ू लगाना शुरू किया कमरे का, पहले से प्लान था। तो बेटा आया, बेटा बोला मां आप इतनी बूढ़ी होकर ये काम करिए, झाड़ू लगाओ। नहीं नहीं मैं लगाऊंगा। तो बेटा ने मां से झाड़ू छीन कर लगाना शुरू किया कि शायद उसको कोई तरस आए। उसको कुछ ख्याल ही नहीं किया, वो तो मैगजीन पढ़ रही थी। आखिर 2-3 बार ऐसा किया, उसने कहा मैं लगाऊंगी। वो कहते माता अब तो सारे घर का सारा ही काम करती है, कब सब कुछ गिनाया तो आपको, तो अब ये तो मेरे को दो काम। वो कहे बेटा मैं, तू सारा दिन बाहर जाता है, कमाई करता है, थका हारा आता है, ऐसे करते रहे तब भी उसकी जू नहीं रेंगी कान पर। अच्छा फिर बड़ी समय के बाद उसने मैगजीन से आंख उठाई, बोली ये क्या सुबह सुबह महाभारत कर रहे हो, क्योंकि कलयुग में ज्यादातर इसको महाभारत ही कहा जाता है। انہوں نے پھر دوبارہ ایک بار ریپیٹ کیا اپنا ناٹک. تو بولی اس میں کیا پرابلم ہے, ایک دن تم لگا لیا کرو ایک دن تم لگا لیا کرو. سمجھا آپ نے, کیونکہ یہ کل یگ ہے. تو اس لیے بابا نے ہم کو اس سے الگ کیا. اب ست یگ میں دیکھیے, ست یگ میں شیر اور گائے ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں, نہیں تو شیر گائے کا دشمن, وہ ہنسک. تو ہر چیز وہاں پر ایک دوسرے کی پورک ہے, پرفیکٹ ہے, ہر ایک کو کسی سے کسی کو دکھ دینے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اور ست یگ میں موسم, قدرت, جل, وایو, آکاش, درشیہ, منشیہ اور جتنے ساور جنگم, پشو پنچھی, پودے, پیڑ, سب سکھ دینے والے ہیں. اس کے سین دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے. کوئی چھوٹے سے بچے کو شری کرشن بنا دیتے ہیں تو سب لوگ اس کو دیکھ کر پیار کرنے لگتے ہیں, حالانکہ کل یگ ہی بچہ ہی ہوتا ہے. تو وہاں کی دنیا بابا بنا رہے ہیں, کیونکہ دکھ سے سب تنگ ہیں. تو ان دونوں کا جو مہان انتر ہے دن اور رات کا, اس کے بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے ایک شبد میں بیان کیا جائے کہ آخر ست یگ اور کل یگ میں کیا فرق ہے, تو وہ شبد ہے پریم. وہاں پر سوبھاوک نیچرل پریم ہے, نسوارتھ ساتوک پریم ہے, منشیہ آتماؤں میں بھی ہے, دیوتاؤں میں, پشوؤں میں بھی ہے, پرکرتی بھی انکول ہے, اور یہاں پر اور سب کچھ ہے لیکن پریم کی کمی ہے. اچھا, اب ہمارے پتا کو کہتے ہیں گیان کا ساگر, تو ہم بھی ہو گئے گیان سروپ. نیکسٹ کہتے ہیں پریم کا ساگر, ہم ہو گئے پریم سروپ. پھر کہتے ہیں شکتی کا ساگر, ہم ہو گئے شکتی سروپ. اب ہمارے لیے کیا ہے کہ نہ تو ہم ست یگ میں ہیں اور نہ ہم کل یگ میں ہیں. دھیرے 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 ہم ست یگ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں. ست یگ کے درشیہ جیسے کوئی جہاز, سمندر کا جہاز بالکل ساگر میں ہوتا ہے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا, لیکن جب کنارے کے سمیپ آتا ہے تو دور سے تھوڑا بہت دھندلا دھندلا دکھنا شروع ہوتا ہے کہ کوئی لینڈ آ رہا ہے. تو بڑے خوش ہوتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں وہ سی سکنس سے کہ سمندر میں ہی پڑے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ دونوں سین ہمارے پاس ہیں. کل یگی منشیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اور بابا ہمیں روز گیان کی مرلی کے دوارا اور یوگ کے دوارا وہاں سے ان سینز کے ساری چیزوں کو بھلا کر ہمیں پورا چکر لگوا کر سارے سائیکل کا جو آنے والا سمے ہے وہ بار بار ہمارے من میں بدھی میں ٹھہراتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں یہاں جا رہے ہیں, ہم یاترا پر ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ ہمیں گیان تو پورا ہے, اگر تھوڑا بہت کم ہو تو اگلے دن کی مرلی میں پورا ہو جاتا ہے. تو نالج ماسٹر گیان ساگر تو ہم ہیں. پچھلی مرلی میں بابا نے کہا بھی کہ بچوں کو بچے نالج فل تو بن گئے ہیں, تینوں کالوں کا گیان, تینوں لوکوں کا گیان اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں, और दूसरे को भी अच्छी तरह समझा सकते हैं, ये तो ठीक है। दूसरा नंबर है प्रेम। अब बाबा प्रेम का सागर, हम प्रेम स्वरूप। अब प्रेम का सागर होने के उसके बच्चे प्रेम स्वरूप, बाबा कहता है ये नंबर वाइज है। और नंबर वाइज क्यों है, वो तीसरा कारण है कि शक्ति स्वरूप, जो शक्ति के द्वारा कलयुगी चीजों को आउट रखे और सतयुगी को अंदर रखे और सदा इस कॉन्शियसनेस स्मृति में रहे कि किसी भी गुप्त रीति से, किसी भी चलाकी से, किसी भी गुप्त दरवाजे से कलयुग की आंधी तूफान अंदर ना आए, इतनी शक्ति हो उसमें नंबर वाइज। और हर एक को अनुभव है कि जब सब दरवाजे बंद होते हैं, टाइट होता है, जैसे आप मधुबन में आए हैं, दुनिया के लोगों का आपको यहां कुछ साथ नहीं है, सब बाबा के बच्चे ही हैं, तो संगम युग का अनुभव होता है। और संगम युग तो बाबा कहता है इतना श्रेष्ठ है, इतना बेहद का है, क्योंकि उसमें सारा सुख अति इंद्रिय है, आध्यात्मिक है, और वहां कोई दर्जा बदर्जा भी नहीं है, सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी को बाबा से प्यार है, सभी को बाबा से प्यार है। लास्ट मुरली में भी बाबा ने कहा कि मेरे को अपने लास्ट बच्चे से भी उतना ही प्यार है। तो वो बाबा दे रहा है, हम ले रहे हैं, फिर क्या होता है। तो बाबा कहते हैं कि जो शक्ति बच्चों के अंदर होनी चाहिए उस प्यार को सदा कायम रखने की, सदा याद रखने की, वह शक्ति जो ही घटती है तो दरवाजा का कोई खिड़की खुल जाती है, छोटा मोटा कोई लीकेज रास्ता बन जाता है, वो अंदर आके हमारे प्यार को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आंधी या तूफान, आंधी जरा छोटी होती है, तूफान जरा बड़ा होता है, तो तूफान के लिए भी बाबा कहते हैं कि उड़ा के ले जाता है चीजों को। कभी आपने देखा होगा बहुत जोर से तूफान आए तो तीन व्यक्ति चीजें बड़ी बड़ी उड़ा लेता है। तो बाबा कहता है जब बच्चों को तूफान लगता है माया का, तो ऐसे लगता है कि हम उड़ती कला में हैं, उड़ रहे हैं, लेकिन वो दूसरी तरह की उड़ती कला है, ये ईश्वरीय उड़ती कला नहीं है, तूफान की उड़ती कला है। लेकिन उतना समय जब वो उड़ रहे होते हैं तो उनको कहते हैं वाह हम भी देखो उड़ रहे हैं, उसके बाद वो तूफान उनको कहां पटकता है वो बाद का किस्सा है ना। तो इसलिए संगम पर होने की वजह से हमें फायदे भी बहुत हैं और संगम पर होने की वजह से घाटा भी हो सकता है। कभी आपने देखा होगा समुन्द्र के अंदर कई लोग, एक होती है लकड़ी या कश्ती, उसको पकड़ के चलती है वो मोटर से, और समुन्द्र के अंदर सैर करते हैं, बड़ा अच्छा, लेकिन उसमें सुख भी उनको बहुत मिलता है। अगर थोड़ा बहुत बिगड़ जाए वो तो फिर क्या होगा। इसी प्रकार से बाबा ने कहा कि मैं तो आपका रहेगा ही, अब मैं के बाद मेरा जो है उसको अगर हम चेंज करके मेरा बाबा कर लें, तब तो जितनी देर मेरा बाबा रहेगा तो हमारे को जो संगम की प्राप्तियां होती रहेंगी, हम ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, नीचे नहीं आएंगे। अच्छा, हर चीज के अंदर थोड़ा मार्जिन भी होता है, तो बाबा कहता है अच्छा मैं बिंदु हूं, आप भी बिंदु हो, बहुत देर बिंदु याद ना रहे, तो बाबा ने आपको ये भी कह दिया अपना फरिश्ता रूप रखो, मेरा व्यक्त रूप रखो, वो याद रखो। अच्छा फिर भी नहीं तो मेरा मैं और हमारा कर दो, मैं और मेरा नहीं सही, तो जरा नीचे आ जाओ कभी कभी तो मैं और हमारा कर दो, कि मेरा नहीं हमारा, हमारा सेंटर, हमारा परिवार, हमारी ब्राह्मण फैमिली, हमारा मधुबन, हमारी सेवा, मेरा नहीं। अगर सेंटर में जाके भी कहा मेरा, मान लो मेरे पास धन बहुत है तो मैंने सेंटर को ये दिया वो दिया, या मेरे को बुद्धि बहुत है मैंने ये सेवा कराई मैंने वो कराई, फिर भी मेरा हो जाएगा। लौकिक से अलौकिक लेकिन सोने की जंजीर, कम से कम हमारा ही कर दो। तो जब हमें हमारे में भी डिफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए, अपने ईश्वरी परिवार में डिफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए, कोई कमी कमजोरी हमारी आंख में आ जाए, या हमारे सेंटर में, या हमारे सेंटर के टीचर में, या हमारे सेंटर को चलाने की विधि में भी आ जाए, तो फिर ये मैं तंग करता है। मैं से चार नुकसान होते हैं। क्या क्या? जो शरीर वाला मैं है उससे चार नुकसान होते हैं। एक तो मायूसी आएगी, कभी कोई नहीं, ज्ञान में पूरा चल रहे हैं, इतने वर्ष से ज्ञान में हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं, मायूसी आएगी। मुरली को दोबारा पढ़ लो तब भी वो मायूसी रहेगी, क्योंकि पीछे मैं तो रहा ना। अच्छा, मायूसी मगरूरी, मगरूरी मैंने अभिमान, किसी भी तरह का अभिमान, क्योंकि मैं मींस बाकियों से अलग, अभिमान। अभिमान के लिए एक मुरली चली थी, एक नेगेटिव अभिमान भी होता है, नानक नीच वाला, उसमें होता है मेरे से ये कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं ये कर सकता, मेरे बस का ये नहीं है। अच्छा, मायूसी मगरूरी, आगे चलो मुरझाइश, कभी ना कभी खिला हुआ चेहरा मुरझा जाए और कोई आपका फोटो ले ले, कोई ना भी ले, ऊपर तो फोटो हमारा लगातार खिंच रहा है, तो कोई कहे भाई इनके नैन चैन जो हैं, बाबा कहता आपके नैन चैन, आपका चेहरा, आपकी चलन सेवा करे, उस वक्त क्या होगा? कोई कहेगा इसको जरा ज्ञान समझाना, नहीं नहीं मैं थका हुआ हूं या थकी हुई हूं, समझा भी दे, समझाने के लिए मजबूरी हो जाए तो उसको कैसे समझाएंगे? अच्छी तरह नहीं समझाएंगे, जैसे कोई घास काट रहा है उसको जल्दी से भगाएंगे, क्योंकि अंदर क्या है? मायूसी, मुरझाइश। तो बाबा कहता है आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए। दादी जानकी भी कहती है कि हर कंडीशन में हमारे ज्ञान का टेस्ट क्या है, खुशी में तो सब खुश रहते हैं, लेकिन जब खुशी की घटना नहीं है सारा टाइम तो आप खुश नहीं होंगे ना, सामने सिचुएशन आएगी, कभी कोई परीक्षा आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कभी शरीर का प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई काम गलत कर देगा, कोई बिगाड़, उस समय चेहरा कैसा रहा? तो जानकी दादी कहती है कि मैं हमेशा ध्यान रखती हूं कि मेरा चेहरा सदा खुश रहे, सेवा करे, क्योंकि अब बोल सेवा कम करेगा, आपका हल झलक और फलक सेवा करेगी है। कभी आप जाएं सफेद वस्त्र में जाएं तो आपने देखा होगा लोग दूर से खासतौर पे बहनों को देखकर कहते हैं धीरे धीरे आपस में, वो ब्रह्मा कुमारी है, वो ब्रह्मा कुमारी खड़ी है, कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से उनको अलग नजर आता है। और चौथी बात बहुत ही खतरनाक है, वो है मतभेद, मायूसी मगरूरी मुरझाइश और मतभेद। ये मैं हमारे में मतभेद पैदा कर देगा, चाहे आप ठीक ही हों, आप बिल्कुल राइट हों, किसी के पास बताने जाए तो कहेंगे आप तो बिल्कुल ठीक हैं, لیکن آپ کا ٹھیک ہونا بھی مت بھید پیدا کر رہا ہو تو کیا فائدہ. اس لیے بابا کہتے ہیں ستیوگ میں جو پریم ہوتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ سب کی راس ملی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب شادی وغیرہ بھی کرتے ہیں تو دونوں ویکتیوں کی جنم پتریاں لے جاتے ہیں, اور جنم پتری آج کل کے پنڈت پتہ نہیں وہ نقلی بھی کر دیتے ہوں گے, تو جنم پتریاں لے جا کر کے آؤ بھائی منجو بہن کا انتظار کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کر رہے ہیں, کرپیا آپ اپنے
بچے
سہیت باہر آ جائیں. تو انتظار بچے کا ہو رہا ہے یا منجو بہن کا یا دونوں کا؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی منجو بہن, کئی منجو بہن ہوں گی لیکن جو بچے والی ہیں وہ باہر چلی جائیں, ان کا انتظار ہو رہا ہے. اچھا تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو راس ملانا ہے وہ تو کنڈلی ملاتے ہیں, اور اس میں بھی کئی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں ان کی تو کنڈلی بالکل بھی نہیں ملتی, اور اگر پنڈت لوگ ملا بھی دیں پیسے لے کر تو سب جانتے ہیں زندگی کے انوبھو میں کہ باقی لائف میں کہاں تک کنڈلی ملتی ہے نا, اور آپ دیکھتے ہیں مجبوری سے ایڈجسٹ کر کے چلتے ہیں, کئی پھر مار پٹائی کرتے ہیں, کئی ڈائیورس کرتے ہیں وغیرہ, بہت ساری سٹوری ہے اس کی. تو کہنے کا بھاو یہ ہے بابا کہتے ہیں اپنی راس ملاؤ, اور گجرات کے اندر یا جو بھی لوگ گروپ ڈانس کرتے ہیں جو نرت کرنا ہے یہ خوشی کی نشانی ہے. ایک تو آج کل کا نرت ہے جو سیکھ کر کے کیا جاتا ہے, اور ایک بابا کہتا ہے کہ من ناچتا ہے جن کا, پہلے من ناچتا ہے پھر تن ناچتا ہے, اور اس میں کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن وہ جو ناچ نرت کرتے ہیں خوشی سے, ہم نے دیکھا ہے کہ ماتائیں بھی گڑبا کرتی ہیں بڑی بڑی بزرگ, لیکن جب وہ اس میں آتی ہیں خوشی میں تو ان کو بھول جاتا ہے ہمارا شریر کی کیا آیو ہے, وہ خوشی میں آ کے راس کرتے ہیں. اور راس کا پہلا اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ایکشن ملا کے کیا جاتا ہے, پیر کا بھی ملایا جاتا ہے, ہاتھ کا بھی ملایا جاتا ہے, ایکشن سارا ملاتے ہیں تبھی اچھی لگتی ہے راس. اور اس میں ایک دو کوئی میرے جیسا اناڑی چلا جائے تو دور سے پتہ لگے گا یہ مس فٹ ہے, یہ کہاں سے آ گیا ہے, یہ تو وہ پیر ادھر رکھ رہے ہیں یہ ادھر رکھ رہا ہے, تو اس کو آؤٹ کر دیتے ہیں, بھائی تم ابھی سیکھ کے آؤ. تو راس ملانا یا راشی ملانا یا سنسکار ملانا ایک ہی بات ہے. تو ڈانس تو کبھی کبھی کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو جیون کے اندر سنسکار ملانا ہے تو سنسکار ملانا بہت اچھی چیز ہے, اور ستیوگ میں اسی لیے وہ ستیوگ ہے کہ سب کا سنسکار نیچرلی ملا رہتا ہے, وہاں ملان کرنا نہیں پڑتا. یہاں تو لوگوں کے سنسکار اتنے ڈفرینٹ ہیں کہ جیتے جی ایک ہی گھر میں رہنے والے, ایک ہی چھت میں رہنے والے, ایک ہی بلڈ کے ریلیشنز کے بھی سنسکار نہیں ملتے, اور جو دوسرے گھر والے ان کے گھر میں آتے ان کے بھی نہیں ملتے, پڑوسیوں سے تو ملتے ہی نہیں. اور یہاں تک سنسکاروں میں فرق ہے کہ ہم کئیوں کو دشمن کہتے ہیں, شترو, جیسے ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کو شترو گنتے ہیں. کئی جگہ پر بھاشا بھید ہے تو آپ دوسری بھاشا والے ہو تو آپ کو وہ نفرت کرتے ہیں. ہر پر امیر ویکتی جو پیسے والا ہے وہ غریب کو تچھ اور نیچ گنتا ہے, جو پڑھا لکھا ہے وہ ان پڑھے کو مورکھ سمجھتا ہے. مطلب ہمارے کسی بھی بات میں فرق آنے سے لوگ سنسکاروں کے بھید سے دوسرے کو نیچا گننے لگ جاتے ہیں, ان کا اپمان چاہے منہ سے نہ کریں ان کا اپمان کرتے ہی رہتے ہیں. یہ ہے کلجگ کی پرابلم. हर लेवल पर यह प्रॉब्लम है। तो कहा टोटल संस्कारों का मिलना, मनुष्य आत्माओं के का मिलना, फिर पशुओं का मिलना, पशु पंछियों का मनुष्यों से मिलना, सतयुग में आपके सामने आके मुरलियों में आया हुआ है कि पंछी अपना कर्तव्य दिखाएंगे, नृत्य करेंगे, उल्टा सीधा होके दिखाएंगे, मोर नाचेंगे, पानी के झरने इतने फर्स्ट क्लास होंगे, खुशबूदार पानी होगा, नीचे पत्थर की जगह आपको वहां हीरे जैसे चमकीले नजर आएंगे और दिल खुश होगा। उसकी सीनरियां भी नहीं हम बना सकते आजकल। और आत्माओं का क्या कहना, कुदरत कोई ऐसा मौसम नहीं होगा जो आप गर्मियों में पसीने से पागल हों और सर्दियों में ठठर ठठर कांपते फिरें। बिल्कुल खुशगवार जब मौसम तो होंगे, बारिश भी ऐसी नहीं होगी जो आप भीग कर बाहर भागते फिरें, फुहार होगी। तो वो सारे जो चीजें हैं उसके पीछे क्या है, उसके पीछे है नफरत की एब्सेंस और फुल प्रेम। अच्छा, अब हम हो गए प्रेम के सागर के बच्चे। अब एक प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या अंधेरा और रोशनी इकट्ठे रह सकते हैं। कोई कहे एक ही जगह पर अंधेरा भी है रोशनी भी है, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रोशनी का मतलब ये अंधेरा नहीं है, और रोशनी की एब्सेंस को अंधेरा कहते हैं। यूं ही स्विच ऑन किया अंधेरा भागा। कि कहते भी है ना, अंधेरे को आप झाड़ू लेकर थोड़ी बाहर निकालोगे, स्विच ऑन करो अंधेरा गया, इकट्ठे नहीं रह सकते। चलो आगे चलो, अगर हम प्रेम को रोशनी कहें, सतयुग कहें, और नफरत को अंधकार कहें, तो क्या प्रेम और नफरत इकट्ठे रह सकते हैं? आप सोच करके सोचना दिल में। आजकल के लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है थोड़ा भगवान भी है, थोड़ा इंसान भी है, थोड़ी उसमें बुराई भी है, थोड़ी उसमें अच्छाई भी है, उसी को इंसान कहते हैं। लेकिन आप लाइफ में भी आप देखेंगे, कईयों से आपको प्रेम है, कईयों से आपको अच्छा नहीं लगता उसका कॉन्टैक्ट या उसका रहना सहना जो भी है उसकी नेचर। तो हमारी नेचर जिससे मिलती है उससे प्रेम है, और जिससे हमारी नेचर नहीं मिलती उससे प्रेम की कमी है। तो ये प्रश्न खास है संगम युग के ब्राह्मणों के लिए कि भाई सोचो, अगर परमात्मा प्यार का सागर है हमारा पिता, तो परमात्मा के मन में किसी के लिए भी नफरत है? किसी के लिए भी नहीं है, नफरत का तो स्थान ही नहीं, प्यार का सागर है। अच्छा, यहां तक कि प्यार प्रेम को इतना ऊंचा, प्रेम एक मूल्य है, उसको इतनी ऊंची उपाधि दी गई है कि लव इज गॉड। एक होता है गॉड इज लव, वो तो ठीक है, लेकिन प्रेम ही भगवान है। तो प्रेम और भगवान ओतप्रोत हैं। परमात्मा मींस प्रैक्टिकल में परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ गुरों में ज्ञान तो कोई कोई लेता है, लेकिन प्रेम इतना है कि परमात्मा जो ज्ञान नहीं भी लेते, जो पशु पंछी हैं, जो एक दूसरे को खा रहे हैं, जो कांटेदार पेड़ हैं, जो खट्टे अनार हैं, खट्टे संतरे हैं, सबको परमात्मा बदल के अपने प्रेम से सतयुग में मीठे कर देता है। सतयुग में कोई ऐसी चीज होती नहीं जो एक दूसरे से नफरत करे या एक दूसरे को दुख दे, किसी को भी दुख दे, तो किस कारण से? कि परमात्मा के प्रेम की शक्ति है ना। हमें तो बाबा कहता है आप योग लगाओ, आप अपने योग से अपने विकर्म विनाश करो, अपने योग से तत्वों को सतों पर ध्यान बनाओ, है मनसा सेवा करो। हम तो नंबर वाइज ही करते हैं, लेकिन क्योंकि पिता का काम है परिवर्तन करना, हम उनके साथी हैं, तो जितना जितना हम करते हैं उतना उतना हमको बाबा उसका एवजा दे देता है। लेकिन टोटल तौर पे देखा जाए, कि जिन्होंने कभी तपस्या नहीं की, योग का नाम नहीं जानते, कभी मुरली नहीं सुनी, बल्कि बाबा के काम में विघ्न भी डालते रहते हैं, ऐसी भी आत्माएं हैं, वह भी टोटली घृणा से, नफरत से, दुख से, अशांति से मुक्त हो जाते हैं। चलो वो सतयुग में नहीं आते, त्रेता में भी नहीं आते, लेकिन वह भी शांति प्राप्त करके परम धाम में चले जाते हैं, मुक्ति पा लेते हैं दुख से। तो मुक्ति रूपी वर्षा तो सबको मिलता है, दुख से मुक्ति, मुक्ति का मतलब ही ये है। और टोटल परिवर्तन सतयुग में हो जाता है, इसीलिए बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा मुझे प्यारा है, कि लास्ट बच्चा भी कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारता है, कुछ ना कुछ अपनी चेंज के लिए भगवान को पहचानता है, तो उसको इतना तो हो जाता है कि स्वर्ग के गेट के अंदर आ जाए, थोड़े टाइम के लिए आए या ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन बाकी सारा विश्व और ब्रह्मांड शांत हो जाता है। अर्थात उसमें दुश्मनी का भाव, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव, ये जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं जीरो हो जाते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं जी बाप समान बनो, ठीक है ना? हम सब क्या करना चाहते हैं? बाप समान बनना चाहते हैं। तो बाप समान का मतलब हम भगवान तो नहीं बन सकते, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन भगवान भगवतियां जरूर बन सकते हैं, और त्रेता वालों को भी, राम सीता को भी भगवान भगवती कहते हैं, चाहे वो कमी के कारण कमानधारी रहते हैं, राज करते हुए भी उनको कमानधारी दिखाया जाता है, कमाल नहीं कर सकते लेकिन फिर भी भगवान भगवती तो रहते हैं, और क्योंकि उस तरह के ज्यादा होते हैं तो उनकी प्रजा भी ज्यादा होती है। त्रेता वालों की प्रजा ज्यादा है लेकिन अपनी क्वालिटी की है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें ये सोचना चाहिए, संगम पर बाबा की कई मुरलियों में है कि लिफ्ट की स्विच आपके हाथ में है, अगर आपने ऊपर का बटन दबा दिया तो ऊपर चले जाओगे, और अगर अंडरग्राउंड का दबा दिया तो लेवल से भी नीचे चले जाओगे। वो स्विच मैं का ही है, क्योंकि हमारा पहला प्रश्न भी ज्ञान का था जब हम आए थे, मैं कौन हूं, और बाबा ने कहा अंतिम प्रश्न भी यही होगा, मैं कौन हूं। तो अगर आपने बीच में इम्तिहान पास कर लिया तो आप ऊपर चले जाओगे हैं, और वरना बोलते रहोगे मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम के निवासी हूं, मैं उड़ता पंछी हूं, उड़ोगे नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरी समझी है, ज्ञान समझा है, प्रैक्टिकल नहीं किया। इसलिए संगम पर हमें जितना समय हम आत्मा रूपी मैं में रहेंगे, सीधी बात है, जितना समय हम आत्मा कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो हमारा स्विच ऊपर को ले जाएगा, क्योंकि आत्मा मींस और भी आत्माएं हैं, वो मेरे भाई हैं, एक ही पिता की संतान है। अब एक पिता की संतानों में तो फिर भी प्यार रह सकता है, लेकिन अगर पिता के तीन भाई हों, आपके ताऊ चाचा भी हों, और उनकी भी संतान हो जिसको कजन कहते हैं, जैसे एक किसी की दो तीन पत्नियां हो तो उसको सौत कहते हैं, सौतीली माँ, उसके बच्चे फिर सौतीले बच्चे हो जाते हैं, मेरे सौतीले भाई, जैसे सदाम हुसैन के कई हाफ ब्रदर्स हैं। तो इस प्रकार से हमारा तो एक ही पिता है सिंगल, और उसके बच्चे हमारे डायरेक्ट भाई बहन है, कोई कजन नहीं है हमारे, इसलिए हमें उनको, तभी मैंने कहा कि पिता तो पिता ही है, लेकिन बाबा हमेशा कहता है एक तो ड्रामा और एक परिवार, ये दो चीजें हमारे टेस्ट के लिए हैं। ज्ञान मिल गया और हम कोई घटना हो जाए तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर लें, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा भी होता है। तो यह जो क्वेश्चन मार्क है उस समय हमें ड्रामा भूला हुआ है, थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो हम कहेंगे अरे ये तो ड्रामा है, पहले भी हुआ था, कोई बात नहीं, वो अपना पार्ट कर रहा है, हम अपना पार्ट कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होता है, उस जब भूला हुआ है, उसने ऐसा क्यों किया, ये गलत क्यों किया, दूसरों को भी फिर हम कहते हैं देखो ये बात ठीक है, ये ज्ञान में होनी चाहिए, ये सेंटर में होनी चाहिए। तो हमने क्या, उस समय हम उस बटन को पकड़े हो जो दूसरे मैं वाला है, और हम अपने लिए मायूसी पैदा कर रहे हैं, दूसरों में मतभेद पैदा कर रहे हैं, और अपनी बात को राइट कहकर सिद्ध करते हुए जिद कर रहे हैं, अर्थात हम अहंकार में हैं, हम मजबूर, जिसको कहते हैं मगरूर हैं, तो मगरूरी के नशे में चूर हैं। इसलिए हमें ये टेस्ट है हमारा कि हम कितना टाइम ड्रामा को याद रखते हैं। ड्रामा हमें याद तो आता है, घटना के बाद में आता है तो नुकसान करके आ जाता है। जैसे बाबा कहते ना, किसी गाड़ी की ब्रेक ढीली हो लगती तो है, लेकिन जब लगाना चाहे उस समय नहीं लगती, एक गज दूर जाके लगती है, और तब तक कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, जान का या माल का, कोई जख्मी हो जाता है या कोई चीज टूट जाती है। तो इसलिए ड्रामा रूपी ब्रेक को खास तौर पे जब कोई व्यक्ति चढ़ रहा हो या उतर रहा हो फास्ट, तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लेवल सड़क पे ब्रेक नॉर्मल भी चल सकती है, लेकिन जब घोर कलयुग नीचे को बहुत तेजी से जा रहा है और आप भी उसी दुनिया में रह के अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं अभी तक, और आप स्वयं ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ जिसको कहते हैं, तो दोनों तरफ से खास तौर पे नीचे जाने से बचने के लिए तो हमें अपनी ब्रेक को बहुत लगातार उसको देखते रहना है, और इन एडवांस एक पैर तो ब्रेक पर ही रखें ताकि पता नहीं कब लगानी पड़ जाए। तो जब घटना आए, घटना के आने से पहले ही उसका पूर्व ज्ञान हो जाए। इसलिए बाबा कहता है मास्टर त्रिकालदर्शी रहो, सुदर्शन चक्कर घुमाते रहो। घटना से आने का पूर्व ज्ञान किसको होगा जो लगातार सुदर्शन चक्कर घुमाता रहेगा। जैसे हमें खेल कराते हैं ना, वो कुर्सियों वाला खेल नहीं कराते, म्यूजिक बजाते रहते हैं, हैं? हेवन इज कमिंग, हेवन इज कमिंग, हेवन इज कमिंग, तो सब भागने वाले अलर्ट रहते हैं। जो ही कहा स्टॉप तो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी पे बैठना है, तो उनका अटेंशन रहता है, अपने ग्रुप की तरफ भी रहता है कि मेरे आसपास भी कुछ हो जिनको हम पकड़कर अपना जीत जाएं। तीन कहेंगे तो तीन का ग्रुप बन जाएगा, जो बच गया वो बाहर। इसी पर अंत में कोई जीतते भी हैं, ज्यादा सावधान रहते हैं। थोड़ी लक भी काम करती है, थोड़ा अनुभव भी काम करता है। तो इसी प्रकार से ड्रामा की पॉइंट खिसकी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर याद जरूर आएगा। इसीलिए कहते हैं कि सरस्वती जो थी, तीन देवियां बगीचे में सैर कर रही थी, सरस्वती, लक्ष्मी और भावी, जिसको हम ड्रामा कहते हैं भावी। तो नारद जी भी वहां गए, तो अचानक नारद जी के नाक में खुजली हुई, तो नारद जी ने अपने हाथ से ऐसे ऐसे किया। अब तीनों देवियों ने कहा ये नारद जी हमें नमस्कार सलाम कर रहे हैं, तो आपस में कहने लगी कि सरस्वती कह मुझे सलाम किया है, लक्ष्मी कह मुझे नमस्कार किया है, और भाभी कह मुझे किया है। तो उन्होंने, क्योंकि जब दो तीन होते हैं तो डिफरेंस तो हो ही जाता है, हर एक को अपना अपना, सरस्वती को अपना वैल्यू है, मैं बुद्धि की देवी हूं, लक्ष्मी कहती मैं पैसे की हूं, मेरे बगैर तो काम ही नहीं चलता, भाभी कहती तुम कुछ भी कर लो, भाभी टाले नहीं टले, मेरे बगैर तो गुजारा ही नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा नारद से पूछ लेते हैं, तो गई नारद जी, प्रणाम, बोला क्या है। तो नारद जी, आप सरस्वती को बहुत ज्यादा था, बुद्धि जैसी तो कोई चीज ही नहीं, जैसे हम ज्ञानी आत्मा ज्ञान ले लेते हैं, हल्दी की गांठ लेकर हम पसारी बन जाते हैं, दिलवाला मंदिर में जो जाएगा उसको समझाना शुरू कर देगा कि भाई दिलवाला हमारा यादगार है। आखिर वो रोकते हैं, भाई किस कोई कोई समझाओ। अच्छा, तो सरस्वती ने पूछा, नारद जी आपने मुझे नमस्कार किया है ना। नारद जी बोले, मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा। उसने कहा क्यों। बोला जब कोई घटना घट जाती है उस समय तो तुम आती नहीं, बाद में आती हो। हैं, जैसे दिल्ली के पुलिस वाले एक्सीडेंट के बाद आते हैं ना, तो तुम अकल जो होती है, अकल पहले आ जाए तो नुकसान ही ना हो, घटना घटे ही ना। लेकिन जब हो जाता है बाद में आती हो और पछतावा कराती हो, अरे मैंने ऐसे क्यों नहीं कर लिया, मैंने खाम खा उससे झगड़ा मोल ले लिया, खाम खा उससे गुस्सा कर लिया, तो तुम तो बाद में आती हो। तो अकल के लिए यही कहा जाता है, बाद में आती है। दिल्ली में एक बार आग लग गई तो आग बुझाने वाले जो होते हैं ना, वो इंजन, वो देर से पहुंचे तो आग ज्यादा नुकसान कर दिया। तो दिल्ली में तो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट में आजकल लगी हुई है पार्लियामेंट, तो किसी एमपी ने मिनिस्टर से सवाल कर दिया कि साहब ये आपके आग बुझाने वाले 10 मिनट लेट पहुंचे, इसलिए नुकसान हो गया, आगे के लिए आप क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं। मिनिस्टर से पूछा जाता आगे से क्या सावधानी बरत रहे हैं। तो कलयुग के मिनिस्टर तो ऐसे ही होते हैं, कहते आगे से हम ऐसा प्रबंध कर रहे हैं कि आग लगने से 10 मिनट पहले ही वो पहुंच जाया करेगा हमारा इंजन, समझा आपने। तो ऐसा त्रिकालदर्शी भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब यह कि मौके पर हूबहू उसी वक्त हो। तो सरस्वती को तो उसने मना कर दिया। फिर लक्ष्मी गई कि वाह, क्योंकि पैसे वाला ज्यादातर समझता है, इसलिए बाबा कहता है कि मैं गरीब नवाज हूं, अगर आपके पास धन है, मुबारक है, उसको जितना जल्दी सफल कर लो और जितना निर्माणता से कर लो अच्छा है, नहीं तो सफल करते करते भी तुमको अभिमान हो जाएगा, अपनी मन माननी शुरू कर दोगे। तो वो गई लक्ष्मी कि देखो जी आजकल तो पहले पैसा फिर भगवान है, तो मेरे को आपने प्रणाम किया है ना नारद जी। उसने कहा मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूंगा, है मुझे भी नहीं करोगे। जिसके पास तुम आती हो वो भी पागल हो जाता है, जिससे तुम जाती हो वो भी पागल हो जाता है। तो पैसा किसी के पास आ जाए वो भी अब नॉर्मल हो जाता है, और किसी से खींचा छिख जाए, तो उसने कहा मैं तुम्हें भी नहीं करूंगा। फिर भाभी गई तो उसने कहा आपको आगे से भी प्रणाम, पीछे से भी प्रणाम, क्योंकि आपका भगवान भी आपके बंधा हुआ। तो बाबा कहता है मैं ड्रामा के अंदर मैं भी बंधा हुआ हूं, कहता है ना बाबा, तो इसलिए हम भी ड्रामा के अंदर बंधे हुए हैं। हमारे अंदर दूसरे की गलती निकालने की क्यों संस्कार बैठती है। अच्छा, दूसरे ने गलती की, कलयुग में तो सब गलतियां करते ही हैं और संगम में भी सब गलतियां करते ही हैं। हर गलती हमें अनुभव कराती है कि आगे से ना करो, और परीक्षा ना आए तो अगली क्लास में नहीं चढ़ते। बाबा ने कहा फुटबॉल तुम्हारे सामने नहीं आएगा तो किक किसको मारोगे। इसलिए सब कुछ जानते हुए, क्योंकि बाबा ने कहा आप नॉलेज फॉलो, ज्ञान हमको सारा है, फिर हम क्वेश्चन कर देते हैं इसने ऐसा क्यों किया है? अब बिल्कुल राइट क्वेश्चन करते हैं, उसने गलत किया होता, या क्वेश्चन कर देते हैं इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसको इस समय पे आना चाहिए था, इतने लोग इंतजार कर रहे हैं, इसने ऐसा ठीक काम क्यों नहीं किया, अमृत वेले ये क्यों नहीं उठा, इतना बड़ा है, हम छोटे छोटे हैं, और यही अमृत वेले नहीं आता तो बाकी क्यों कैसे आएंगे, तो हम क्वेश्चन कर देते हैं। तो ड्रामा में क्वेश्चन कर दिया, फिर आगे बढ़ते हैं। दिमाग जो होता है, बुद्धि, संकल्प शक्ति बड़ी तेज चलती है जब नेगेटिव पे आते हैं, क्योंकि नेगेटिव का प्रभाव है कलयुग में। फिर कहते हैं बाबा ने ऐसे ऐसों को टीचर बनाया हुआ, तो बाबा पर भी डाउट हो गया, बाबा ने ऐसे ऐसे को रखा हुआ आगे, یہ تو اگزامپل ہی غلط ہے، سیمپل ہی غلط ہے، لوگ مال کیا خریدیں گے؟ اسی لیے ہماری سیوا نہیں بڑھتی۔ تو ایسے اور آگے چلتے جاؤ، میں زیادہ ورنن نہیں کرتا، پرنتو یہ کوشچن کرنا غلطی دوسرا کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو کرے گا سو پائے گا، اس کا پھل اس کو ملے گا، اس کی غلطی سے میں کیوں ڈسٹرب ہوں اور دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہوں؟ اس لیے بابا نے اس کو بھی سپشٹ کیا ہے، کہتے کیا کیوں ہم رائٹ کو رائٹ، رانگ کو رانگ بھی نہ کہیں؟ یہ کہاں کا گیان ہے؟ کوئی غلط کام ہو رہا ہے مجھے تو کہنا چاہیے نا، اس کو روکنا چاہیے۔ بابا کہتا ہے کہ رانگ کو رانگ سمجھنا، رائٹ کو رائٹ سمجھنا ٹھیک ہے، لیکن بدھی تک۔ اگر اس کی رانگ کو آپ اندر لے گئے تو اس ویکتی کے ساتھ آپ کا ویوہار بھی بدل جائے گا، جب اس کو دیکھو گے یہ غلطی کرنے والا ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے بابا کہتا ہے کہ ڈراما کو دھیان میں رکھو تو آپ خوش رہو گے۔ یہ سارا گیان ہمیں خوشی کی طرف لے جانے والا ہے، ہمارا دکھ گھٹانے والا ہے، لیکن وسمرتی آنے سے ٹیمپریری وہ نکل جاتا ہے۔ اور لاسٹ بات، پریوار، تو دیوی پریوار میں تو بھانت بھانت کی آتمائیں ہیں۔ جب بابا کہتا ہے مجھے لاسٹ بچہ بھی پیارا ہے، ماتا پتا کو تو بچے پیارے ہی ہوتے ہیں لیکن فرسٹ بھی تو پیارا ہے نا، تو ماتا پتا کو سارے ہی بچے پیارے ہوتے ہیں لیکن لائق بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، ایسا تو ہے نا؟ ہے ارجن یہ گیان پاتر کو دو، کہتا ہے۔ تو جو اس گیان کو دھارن کر کے لائق بن کے دوسروں کو کرواتے ہیں، غلطیوں کے نمت کم بنتے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ سودا کرنے کو زیادہ تیار ہوتے ہیں اور سودا نہ کرنے کو کم تیار ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے بھگوان کی سلیکشن ہے، پرماتما کی سلیکشن ہے، کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا یہ سجو کی آتما ہے، کسی کے یہ بھی نہیں لکھا ہوا یہ انت تک کہاں پہنچے گی۔ کئی اچھے اچھے چلنے والے، یہ اچھے اچھے سولجر بھی مر جاتے ہیں، اس کو تیر لگ جاتا ہے، کسی کا گھوڑا مر جاتا ہے۔ تو بابا کہتا ہے یہ یدھ ہے، تو یدھ میں رزلٹ تو انت میں ہی نکلنا ہے۔ کئی بابا کہتا ہے انت میں آ کے پورے ساودھان ہو جاتے ہیں، لاسٹ سو فاسٹ کا بھی گائن ہے، سیکنڈ میں جیون مکتی کا بھی گائن ہے، تو بڑی بھاری لیلا ہے۔ تو اس لیلا کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کسی آتما پر انگلی کر کے یہ کر رہا ہے، یہ گیان کے ورد ہے، ہو سکتا وہ پرشارت کر رہا ہو۔ تو ہمیں کوشچن کرنا، میں نے پرماتما میں کوشچن کرنا، تو ہمیشہ جب پوچھا جاتا ہے پرماتما میں نشچے پورا نشچے ہے، گیان میں نشچے پورا نشچے ہے، پرنتو پھر پرنتو میں کہتے ہیں براہمن پریوار میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے، اتنا اونچا گیان یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بابا کہتا ہے اس میں بھی نشچے رکھو، میں شیو کی برات گائی ہوئی ہے کہ شیو کی برات میں لنگڑے لولے کبڑے سب جا رہے تھے، تو شیو کو برات ہی ایسی لینی ہے، کیونکہ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو کمزور مریض کو ٹھیک کرے، اچھے تو اپنے آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ تو بابا کہتا ہے میں ایسے الیاؤں گنکاؤں کبجاؤں اجامیل کو بھی پاون کر کے میں ستجگ بنا لیتا ہوں۔ تو یہ دھیان رکھتے ہوئے سار یہ ہے کہ سنسکار بلانے کے لیے ہمیں ترکال درشی رہنا چاہیے، بابا کو یاد رکھنا چاہیے کہ بابا کی یہ رچنا ہے، کیسا بھی ہے بابا کا بچہ اس لیے پرمپری ہے، جب بابا کو اتی پری ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ تو اپنے اندر سوچ کر اپنے اندر اپنے درشٹی میں پریورتن لانا ہے، یہ سوچیں گے دوسرا ٹھیک ہو جائے گا تو ہم خام خواہ میں پریشان ہوں گے۔ تو لاسٹ مرلی کتنی اچھی تھی کہ اپنی شان میں رہو تو آپ دوسروں کی بھی شان رکھیں گے، خود پریشان ہوں گے تو دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ تو سیلف ریسپیکٹ کو میں قائم رہنا، سیلف ریسپیکٹ کو سدا یاد رکھنا، اپنے سامان کی سیٹ پر سیٹ رہنا، کہ سب چیزوں کا علاج ہے. تو سیلف ریسپیکٹ والا راس ملا سکتا ہے, نیچے گرے کو اٹھا سکتا ہے, چھوٹا ہے تو گود میں لے سکتا ہے. تو سیلف ریسپیکٹ کا پروف ہے سمان دینا. اگر ہم سمان دینے میں تھوڑا بھاری محسوس کرتے ہیں, دوسرے کو سمان مل رہا ہے تو اس میں تھوڑا ڈسٹرب فیل کرتے ہیں, اپنا سمان ہو تو زیادہ خوش ہوتے ہیں, دوسرے کے اپمان مل رہا ہے تو اس میں خوش ہوتے ہیں, اور اپنا اپمان سہن نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ گڑبڑ ہے. اس لیے سوامان میں رہ کے سمان دینے کی, ہر ایک کو سمان دینے کی شکتی ہمارے اندر ہو اور سدا ہم پریم سروپ رہیں, تو میرا خیال ہے ہمارا جو بابا کہتا ہے اس کی شکشاؤں کو ہم اور زیادہ پالن کر سکیں گے. اوم شانتی.
چل کر نام ہم